السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کی اہمیت اور ضرورت. قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے احادیث کی قسمیں. دسواں باب, پیج نمبر 145. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم کس بنا پر کس حدیث کو ایکسیپٹ کریں گے اور کس بنا پر کس حدیث کو ریجیکٹ کریں گے, تو قبولیت اور اس کو ناقبول کرنے کے اعتبار سے کون سی قسمیں ہوتی ہیں, تو دو قسمیں بتائی گئی ہیں, مقبول اور مردود. مقبول جس کو ہم قبول کرتے ہیں اور مردود جس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو مقبول میں پھر دو آتی ہیں ٹرمز, صحیح اور حسن, اور مردود میں ضعیف اور موضوع, یعنی گھڑی ہوئی حدیث. مقبول احادیث کی دو قسمیں ہیں, حدیث صحیح اور حدیث حسن. یعنی حسن حدیث کا بھی وہی درجہ, جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا نا کہ حسن حدیث کا جو پانچ شرائط ہوتی ہیں صحیح حدیث کی, وہ پانچ شرائط میں سے وہ چار شرائط پر صحیح ہوتی ہے. صرف ایک جو شرط ہوتی ہے کہ جو راوی ہے ان کا حافظہ آخری عمر میں چل کر کمزور ہو گیا ہو, تو اس وجہ سے اس کو حسن کے درجے میں ڈال دیا گیا. اور جو ریجیکٹڈ احادیث ہیں اپنے ضعف کی بنا پر, کمزوری کی بنا پر, چاہے وہ اس کے راویوں کی کردار پر اگر کوئی بات آتی ہو, اور بعض وقت بہت سارے محدثین حدیث کا متن دیکھ کر بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ رسول اکرم کا قول نہیں ہو سکتا, تو اس بنا پر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو مردود احادیث جنہیں ضعیف بھی کہا جاتا ہے تین وجوہات کی بنیاد پر مسترد کی جاتی ہیں, ریجیکٹ کی جاتی ہیں. سقوط سند کے سبب, یعنی سند میں کوئی ایسا کوئی نقص پایا جانا, یعنی اگر سند منقطع ہو اور درمیان میں کوئی راوی غائب ہو. تین قسمیں جن ہم نے پڑھی تھی ضعیف حدیث کی, تین قسمیں جس میں راوی غائب ہوتے ہیں. کیا ہے وہ تین نام, کوئی بتا سکتا ہے مجھے جلدی جلدی؟ تو ہم نے وہ تین اس دن اس کے ٹرمز پڑھے تھے ضعیف حدیث کے, جس میں سند کا انقطاع پایا جاتا ہو. سیکنڈ, راویوں کے اختلاف کے سبب, یعنی اگر کوئی راوی ثقہ راوی سے اختلاف کرے تب بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. یعنی جیسے کہ چھ سات راویوں نے سیم جملہ لکھا حدیث کا جو رسول اکرم نے فرمایا تھا, اور کوئی ایک راوی جو کہ بہت ثقہ ہے, یعنی بہت ان کے کردار کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھے ہیں, نیک ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, سچ بولنے والے ہیں, لیکن ان کے سننے میں غلطی ہو گئی ہو یا لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو, تو تین چار نے ایک جیسا سب کچھ لکھا اور ایک نے الگ لکھ دیا, تو پھر کیا ہو گیا, کنٹرڈکشن ہو گیا نا حدیث کے الفاظ میں, تو اس وجہ سے پھر وہ حدیث کیا ہو جائے گی, ریجیکٹ کر دی جائے گی اور ضعیف میں چلی جائے گی. تو راویوں کے اختلافات کے سبب حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. تیسرا ہے تان راوی کے سبب, یعنی اگر راوی متعون ہو, متعون مطلب جس کے ڈیلی اس میں ہم تانے دیتے ہیں دوسرے کو, ویسے نہیں بلکہ اس کے کردار پر بات کی گئی ہو, کہ کیونکہ حدیث کی دنیا میں یا حدیث کی فیلڈ میں اصل میں غیبت کو جائز قرار دیا گیا تھا, کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول کی احادیث بیان کر رہے ہیں, تو احادیث بیان کرنے کے لیے جن راویوں سے آپ حدیث لے رہے ہیں ان راویوں کے کردار کے بارے میں اگر تمہیں کچھ معلوم ہو تو بتا دو کھلم کھلا, کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ رشتہ کرتے وقت ہم بات بتانے کی ہم کو اجازت ہے کہ جب رشتہ کر رہے ہوں یا بزنس کرتے ہوں, تو اسی طرح سے حدیث میں بھی بتانا ضروری ہے کہ جس راوی سے آپ حدیث لے رہے ہوں اس کا کردار کیسا تھا. اور یقین جانے کہ آپ قدیم حدیث پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ اگر کسی کی کسی سے آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی اور کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا, تو وہ اس کو بد دعا دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کوئی محدث کو مسلط کر دے. یعنی کسی محدث کا اس کے اوپر مسلط ہو جانا, یعنی ایک لڑائی میں کسی کو ڈیفیٹ کرنے سے بہت بڑا کام تھا, ایسا سمجھیں. کیونکہ پھر جب وہ کوئی حدیث جب جس سے لی جاتی تھی تو اس کی پوری چھان پھٹک کی جاتی تھی. جس شخص سے حدیث لی جا رہی ہے تو اس کا پورا خاندان, اس کی آگے پیچھے کی اور دو تین پیڑھیاں کیسی تھیں, اس کے دادا والد, اس کا خود کا کردار کیسا ہے, چلتا کیسا ہے, بولتا کیسا ہے, ہنستا کیسا ہے, کھانے پینے کا کیا اس کا طریقہ ہے, اس کا بزنس کیا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, ہر باریک سے باریک چھان بین کی جاتی تھی کسی محدث کی. तो अगर रावी मतून हो, इन इसके किरदार पर कोई किस्म का इल्ज़ाम हो, इन उसका किरदार मुश्तबे हो, तब भी हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। तो ज़्यादातर अहादीस क्यों रिजेक्ट की गई? रावियों के किरदार की वजह से। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो यहाँ अगले इस पर भी चार्ट दिया गया है। कबूलियत और अदम कबूलियत के एतबार से ख़बर की किस्में, हदीस को ख़बर भी कहते हैं। इसमें पहले ज़माने में हदीस के लिए ख़बर की टर्म इस्तेमाल की जाती थी, बाद में फिर उसको हदीस कहा जाने लगा, क्योंकि हदीस तो कुछ भी हो सकते हैं। हदीस का मतलब होता है बात या कलाम, तो इसलिए फिर पहले इसको ख़बर कहा जाता था। तो मकबूल की तो सही और हसन है, जो मर्दूद है ज़ईफ़ की। ज़ईफ़ हदीस क्यों ज़ईफ़ होती है? तीन वजूहात की बिना पर हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। सुकूत सनद के सबब ज़ईफ़, तान रावी के सबब ज़ईफ़, और सक़ा रावियों से अख्तलाफ़ के सबब ज़ईफ़ हदीस। सुकूत सनद के सबब जो ज़ईफ़ हदीस होती है, इसमें अलमुअल्लक़, मुरसल, मुअद्दल, मुनक़ते, ठीक है। और तान रावी के सबब अलमुअल्लल, अलमुनकर, अलमतरूक। मुअल्लल जिसमें इलल पाया जाए, कोई बीमारी पाई जाए, कोई छुपा हुआ ऐब हो। मुनकर जिसका इनकार कर दिया गया हो। मतरूक जिसको तरक किया गया, छोड़ दिया गया। यानी मुहद्दिसी ने ये टर्म्स ईजाद की थी, इस्तेमाल की थी कि वो रावी अच्छा हो तो बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है, उसको कोई कबूल नहीं करता। ये अच्छा वो रावी, उसके तो सब ने इनकार किया है। या वो रावी अच्छा जिसके किरदार में कुछ ना कुछ खामी पाई जाती है, कोई छुपा हुआ ऐब है ऐसा, या हदीस में इलल पाए जाए, ठीक है। और सक़ा रावी से अख्तलाफ के सबब ज़ईफ़ हदीस, उसमें फिर अलग अलग उसके नाम हैं, जैसे शाज, मुदरज, मकलूब, मजीद, फिर मुत्तसिल असानिद, और मुसहफ़ और मुस्तरब। इसको हम अलग अलग देखेंगे कि उसमें क्या क्या डिफरेंशिएट है, क्यों उसके इतने नाम दिए गए हैं। और ये जो सुकूत सनद के सबब ज़ईफ़ हदीस है, जो फर्स्ट वाला खाना है, तो सुकूत खफ़ी मतलब जो छुपा हुआ उसमें कुछ ऐब हो, तो मुदल्लस कहते हैं इसको, या मुरसल खफ़ी कहते हैं। मुदल्लस मतलब कोई चीज़ को मिला देना, तदलीस कर देना, जिसमें शुबा पैदा हो जाए। और तदलीस बाज़ों का चेन में भी हो जाती है, और बाज़ों का हदीस के टेक्स्ट में भी हो जाती है। जैसे कि कुछ अहादीस ऐसी हैं, जैसे कि कोई सहाबी हदीस बयान कर रहे थे, समझें, अब हदीस बयान करते करते किसी ने कुछ पूछा होगा सवाल, तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि फ़लाँ लफ्ज़ का ये मतलब है। अब बाज़ जो सुनने वाले थे हदीस के स्टूडेंट्स, हर कोई तो उतना ज़हीन नहीं होता, तो उन्होंने किसी ने क्या किया कि जो सहाबी का एक्सप्लेनेशन था उसको भी हदीस में शामिल कर दिया। तो अब कैसे पता चलेगा? तो जो वही सेम हदीस जब दूसरे स्टूडेंट्स ने उन सहाबी से सुने थे, तो वहाँ पर दूसरा टेक्स्ट भी मिल जाता है आपको। तो सारे रावियाने हदीस एक टेक्स्ट बयान कर रहे हों, और किसी दूसरा कोई एक पर्सन जो है उसमें कोई एक लफ्ज़ इंसर्ट कर रहा हो, तो उसने क्या कर दिया? तदलीस कर दिया, मिला दिया। फिर कुछ लोग क्या करते थे, चेन को खूबसूरत बनाने के लिए भी तदलीस कर लेते थे। यानी जो दुनिया को दिखाने के लिए मुहद्दिस बने थे, तो वो लोग क्या करते थे, चेन को खूबसूरत बनाने के लिए, क्या हमने तो फुला इतने बड़े 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 मुहद्दिसीन से हदीस सुनी है, तो इस वजह से वो क्या करते थे, चेन में ख़ुद से कुछ मिलावट कर देते थे। तो अब जाहिर सी बात है, मुहद्दिसी ने तो बहुत छान पटक से काम लिया, तो उनकी हदीस में पहचान ही जाती थी फिर ऐसे लोगों की, कि अच्छा ये फ़लाँ फ़लाँ से, तो उसका फ़लाँ से मिलना साबित ही नहीं है, फ़लाँ तो उस ज़माने में मौजूद ही नहीं था। तो लिहाजा फिर वो हदीस इस वजह से ज़ईफ़ में चली जाती है, और ज़ईफ़ में फिर वो मुदल्लस कहलाती है। अब हम देखते हैं कि जो मकबूल अहादीस की किस्में सही और हसन हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई भी ख़बर को लेने के लिए या उसको जांचने और परखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, क़ुरान में भी हमको कुछ उसूल दिए गए हैं। और सूरह हुजरात की आयत हमको मिलती है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुन बिनबई फ़तबय्यनू। ए ईमान वालो, अगर कोई फ़ासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए, तो उसकी तहकीक कर लिया करो, है ना। तो इससे पता चलता है कि जब भी कोई ख़बर लेकर आए, तो उसकी पहले तहकीक करना चाहिए कि आया ये सही है या नहीं है। और पहली बात तो लाने वाले को भी देखा जाएगा कि जिसने लाया है वो ख़बर वो कौन है, कैसा पर्सन है, और किस हद तक उसकी ख़बर सही है, तो उसकी तहकीक करनी होगी। तो आप यानी जो जिसने ख़बर लाई है, वो ख़बर लाने वाला बराबर चेन से सुना रहा हो, यानी उसने अपने से पहले जिससे सुना था उसके प्रॉपर नाम ले रहा हो, या उनसे उसने सुना हो, या साबित हो कि वो फ़लाह मुहद्दिस के पास बैठ कर हदीस सीखता रहा है, फिर उसकी अदालत देखी जाएगी कि उसका ज़ाती किरदार कैसा था, आया वो सच्चा है, झूठा है, क्या बोलने वाला है, फिर जो ख़बर वो लाया है उसकी जो यानी उसकी सच्चाई कहाँ तक है, और जब वो सुनाता है कोई बात तो सच सुनाता है नहीं सच सुनाता है, ये सारी बातें। फिर उसमें कहीं कोई इलल तो नहीं पाया जाता छुपा हुआ, तो इसीलिए उसके लिए फिर ये जो पांच शरायत रखी गई हैं, आप देखें या वन बाय वन हम देखेंगे, सही हदीस की पांच शरायत होती हैं। तो इल्म हदीस की इस्तिलाह में सही हदीस वो हदीस है जिसकी सनद मुत्तसिल हो, ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए आपको ये बातें, यकीन जाने की कि इतने तो कम अज़ कम हम जब हदीस पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें उसमें कि आपको ज़ुबानी याद हो या आपको बाय हार्ट हो, मतलब कि कभी भी कोई आपसे पूछे कि अच्छा सही हदीस की शरायत बताइए बताइए, तो आपको बताने आनी चाहिए। तो सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रावी जाबित हो, और उसमें शुजूज़ ना हो हदीस में शुजूज़, और पांचवा है उसमें इल्लत ना हो। متصل سنده بنقل العدل الثابت عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا إلة. تو صحیح ہونے کے لیے جو پانچ شرائط ہیں کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اتصال سند ہو، یعنی حدیث کی سند متصل ہو، یعنی ہر راوی نے اپنے سے پہلے کے راوی کے واسطے سے حدیث حاصل کی ہو، ایسا نہیں کہ ہر سنی سنائی بات بتا دی ہو آگے، نہیں۔ پھر راوی عادل ہو، اور راوی عادل ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ صحابہ کے بارے میں ایک جملہ بہت مشہور ہے، جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں تو ان کو یہ جملہ ضرور یاد ہونا چاہیے زبانی، کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عدل والے تھے، عدل سے مراد یہاں پر سچ بولنے والے تھے، چاہے ان کا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو یا ذاتی مفاد پر ہی ان کے زد کیوں نہ پڑ رہی ہو، تب بھی وہ سچ بولتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی چیز گھڑ کر نہیں لائی، جیسے کہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ ہیں، بہت سارے صحابہ جن میں آپس میں سیاسی اختلاف ہوا تھا، پولیٹیکلی ان کے آپس میں ہوئے تھے پرابلمس، لیکن انہوں نے حدیث کو بیچ میں نہیں لایا۔ تو الصحابہ کلہم عدول، تو راوی کا کیا ہونا چاہیے، وہ عادل ہونا چاہیے، یعنی اس میں پانچ باتیں پائی جانی چاہیے، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، متقی ہو، ثقہ ہو، اور فاسق اور فاجر نہ ہو، شریف اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ اب آپ سوچیں کہ اتنا ہائی کرائٹیریا تھا کسی محدث کا حدیث لینے کے لیے، آپ سوچیں کہ کتنا ان کو اپنے کردار پر دھیان دینا پڑتا ہوگا۔ آپ کو امام بخاری کا واقعہ یاد ہوگا نا کہ جب وہ ایک بار سفر میں تھے، ان کے پاس اشرفیوں کی تھیلی تھی، اور کوئی ایسا عجیب سا بدتمیز سا شخص ان کے ساتھ، اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ اشرفیوں کی تھیلی ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میری اشرفیوں کی تھیلی گم گئی اور وہ فلاں فلاں کلر کی، اس نے کلر بھی پوچھ لیا تھا ان سے۔ اب امام بخاری تو سمجھ گئے کہ یہ شخص تو اس کی نیت بدل گئی اور یہ پیسے لینے کے لیے اس طرح سے ایسا کرے، جبکہ اشرفیاں اس کے لیے میری ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ چھان بین سے پہلے ہی وہ اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں ڈال دی۔ اب جب ساری چھان بین ہوئی تو اس کی تھیلی تو کہیں ملی نہیں، بعد میں اس شخص نے آ کر کہا کہ آپ نے، آپ کے پاس تو اشرفیوں کی تھیلی تھی، آپ نے کیا کیا اس کا، یعنی کیوں آپ نے اس کو کر دیا؟ تو کہا کہ اے بے وقوف شخص، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ان تھوڑی سی اشرفیوں کے لیے اپنی زندگی بھر کی جو میری کمائی ہے، یعنی جو میرا ایک نام ہے، اس کو ختم کر دوں، کیونکہ مجھے تو حدیث رسول بیان کرنی ہے آگے۔ تو اگر حدیث رسول بیان کرنے والوں پر اس طرح کا کوئی الزام لگ جائے تو ان کی تو احادیث ہی نہیں لی جائیں گی، تو وہ اشرفیاں میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اس لیے حدیث کے راویوں کا جو کردار تھا اس کو اتنا باریکی سے پرکھا گیا کہ بہت مشکل تھا اس پر ہر ایک کا اترنا۔ اور اس لیے دیکھیں کہ امام بخاری کی صحیح بخاری کو پہلا درجہ کیوں حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے سارے راوی، یعنی انہوں نے وہ احادیث نہیں جس حدیث کے ہر راوی اے پلس درجے کے تعلق سے، کردار سے عادل تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اچھا راوی عادل ہو لیکن ہر ایک نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھے ہیں بس صحیح ہے، صحیح حدیث بیان کرتے ہیں اتنا لے لیا، لیکن امام بخاری نے کیا کیا کہ ہر راوی اے پلس کردار کا حامل ہو۔ تو راوی عادل ہونا چاہیے، اور تیسرا ہے راوی حافظ اور ضابط ہوں، یعنی حدیث کے تمام راوی ضابط ہونے کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یعنی ان کو اچھی طرح یاد ہوتی ہو چیزیں، یا اپنی کتاب میں درج کر لیں، ان میں یہ باتیں نہیں پائی جانی چاہیے، یعنی فاش غلطیاں کرنے والے نہ ہوں، یعنی بار بار جو غلطیاں کرتے ہیں، حافظی کی خرابی نہ ہوں جسے بھول جانے کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، لاپرواہ اور غافل نہ ہو، غلط فہمی اور وہم کا شکار نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص بار بار یہ کرے کہ حدیث کے الفاظ ایسے تھے یا ایسے تھے معلوم نہیں، یاد نہیں رہا، اچھا یہ کہا تھا یا وہ کہا تھا فلاں نے، تو ایسے لوگوں کی حدیثیں بھی نہیں لی جائے گی۔ تو راوی کو کیا ہونا چاہیے، حافظ، یعنی ضابط ہونا چاہیے راوی کو، اس کا حافظہ تیز ہو اور غلطیاں کرنے والا نہ ہو۔ और चौथा शुजूज से पाक होना चाहिए हदीस, शुजूज नहीं होनी चाहिए हदीस में। शुजूज आप देखें उर्दू का लफ्ज़ शाज़ और नादिर आपने सुना होगा, है ना। शाज़ मतलब कभी कभी, अजनबी के लिए कहते हैं ना ये लफ्ज़ हम, कोई अलग बात, या सब लोग एक बात कह रहे हैं और एक अलग पर्सन एक अलग बात कह रहा हो तो उसको शुजूज कहते हैं। तो हदीस शुजूज से पाक होनी चाहिए, यानी सक्का रावी किसी दूसरे ज़्यादा सक्का रावी के मुखालफत ना करते हों। अभी इसके आगे मिसाल देखेंगे, हदीस के आगे आ ही रही है तो आप समझ जाएंगे मज़ीद इसको। और फिर इल्लत ना हो, इल्लत तो आप जानते होंगे कि बीमारी को कहते हैं, वैसे तो इसका लफ्ज़ी माना। हदीस से इल्लत से पाक हो, यानी हदीस में कोई छुपा हुआ नक्स ना पाया जाए, जो बज़ाहिर आम लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा, लेकिन जो हदीस का इल्म रखने वाले लोग हैं, जो मुहद्दिसीन कराम होते थे, वो इस बारे में बहुत आगे बढ़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हदीस मालूल ना हो, यानी कोई छुपा हुआ हिडन उसमें ऐब ना हो। तो शुजूज़ के बारे में हम देख लेते हैं पहले, तो उससे और बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो इल्लत है वो एक माहिर मुहद्दिस ही पहचान सकता है, हर एक के बस की बात नहीं है ये। और इसमें स्पेशल हमारे उलमा गुजरे हैं जिन लोगों ने इलल हदीस में बहुत काम किया माशाल्लाह, उनकी मशहूर किताबें भी इसमें मौजूद। अब शुजूज सही हदीस के लिए ज़रूरी है कि हदीस शुजूज से पाक होनी चाहिए। जब कोई सक्का रावी अपने से बेहतर की मुखालफत करे तो वह हदीस शाज होगी, यानी अगर मुनफरिद रावी अपने से ज़्यादा सक्का रावी की मुखालफत करे जो हिफ्ज जब्त में उससे बेहतर है, तो ऐसी शाज रिवायत को मुस्तरद यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और शुजूज सनद में भी मुमकिन है और मतन में भी। और मतन की मिसाल दी जा रही है, शुजूज से मतन की मिसाल, हदसन अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद हदसन अल आमिश अन अबी सालेह अन अबी हुरैरा मरफूअन इज़ा सल्ल अहदुकुम रकअतिल फज्र फलयत्तजी अला यमीनिही। अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने आमिश से और आमिश ने अबू सालेह से और अबू सालेह ने अबू हुरैरा से रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई फजर की नमाज अदा करे तो उसे चाहिए कि वो कुछ देर दाएं पहलू पर लेट जाए। अब आप बताइए कि आप लोगों ने ज़्यादातर जो हदीस सुनी होगी तो रसूल अकरम का आपने कॉल सुना कि फेल सुना कि रसूल अकरम फजर की दो सुनतें पढ़ने के बाद क्या करते थे। तो ज़्यादातर यानी बहुत मेजॉरिटी ऑफ मुहद्दिसीन से जो हदीस रिवायत है वह है कि वो आपका फेल बताया गया कि आप अक्सर फजर की दो सुनतें पढ़ने के बाद थोड़ी देर दाएं करवट पर लेट जाते थे। अब यहाँ पर एक अकेले एक मुहद्दिस हैं, ये एक अकेली हदीस में ये बात आ रही है, हालांकि ये सबका किरदार बहुत अच्छे, सारे रावी सिक्का रावी हैं, यानी इनके किरदार पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई फजर की नमाज़ अदा करे तो सोचे कि कुछ देर दाएं पहले पर लेट जाए। तो इस हदीस में रसूल का कौल नकल किया गया है। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि रावी अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने इस रिवायत में रावियों की एक बड़ी तादाद की मुखालफत की है जो तमाम सिक्का हैं और हज़रत आमिश के मुमताज़ शागिर्दों में से हैं। दूसरे तमाम रावियों ने इस हदीस को रसूल अकरम के फ़ेल के तौर पर बयान किया है, जबकि अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने इसे रसूल अकरम के कौल के तौर पर पेश किया है, इसलिए यह हदीस शाज है। तो शुज़ूज़ सनद में भी मुमकिन है और उसका ज़िक्र आगे अहादीस ज़ईफ़ा के बाब लाया जाएगा। तो ये शुज़ूज़ वाली हदीस भी क्या हो जाती है, फिर रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर इल्लत, यानी ये ऐसा कुछ छुपा हुआ ऐब होता है जो हर एक को समझ में नहीं आता है और बहुत बारीक सा होता है। जैसे आप लोगों ने जो लोग तजवीज़ जानते होंगे तो एक तो होते हैं कि इख्फा मिनल खफ़ी, है ना, छुपी हुई गलतियाँ जो होती हैं, एक तो होती है गलती और एक इख्फा मिनल खफ़ी होती है। तो इल्म हदीस की इस्तेलाह में इल्लत से मुराद वो मख्फी ऐब यानी छुपा हुआ ऐब यह नक्स है जो हदीस की सेहत को मजरूह कर देता है, इन इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर ऐब बिल्कुल वाज़े हो तो भी उसका शुमार इल्लत में नहीं होगा, यानी जो ज़ाहरी ऐब है वो तो हर कोई देख सकता है पहचान सकता है, जो छुपा हुआ ऐब होगा वही इल्लत कहलाएगा। और ये जो बहुत ही माहिर मुहद्दिसीन थे जिनकी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर गईं हदीस की खदमत करते करते, वही पहचान सकते हैं। तो हदीस मुअल्लल के लिए ज़रूरी है कि उसकी इल्लत मख्फी हो यानी छुपी हुई हो और उस इल्लत से हदीस की सेहत भी मजरूह होती हो। और इल्लत ये भी कभी मतन में होती है और कभी सनद में पाई जाती है, और उसके भी कई रीज़न्स हैं, कई असबाब हैं। जैसे जो हदीस बयान करने वाले रावी हैं, रावी का समा अपने शेख से मारूफ ना हो, यानी ये बात मशहूर ना हो कि हाँ फला रावी ने अपने शेख से हदीस डायरेक्ट सुनी थी, ठीक है। ताबई को रिवायत में वहम हो जाना जबकि सहाबी से रिवायत महफूज हो, यानी सहाबा ने तो उस हदीस को सही सुनाया था लेकिन जो रावी थे ताबई उन्होंने हदीस को सुनने में गलती कर दी, यानी कुछ उन्होंने कुछ सुनकर उनको उन्होंने हो सकता प्रॉपर याद ना रखा, कोई लफ्ज़ उसमें से मिस कर गए हों। तीसरा है रिवायत में अन अन हो और एक रावी साक़त हो जिसका इल्म दूसरे तरीक़ों से हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा हमने उनसे फ़लाँ से सुना था फ़लाँ से सुना था, नाम ना हो बस अन हो, उनसे सुना था बस इस तरह से, तो वो भी हो जाएगा। फिर रावी का शेख से समा साबित हो लेकिन इस ख़ास हदीस का समा साबित, यानी एक मुहदिस दूसरे मुहदिस से जाकर हदीस तो सुनता है तो लेकिन उसने दूसरी सारी अहादीस सुनी लेकिन वो जो पर्टिकुलर वो हदीस जिसमें छुपा हुआ ऐब है वो सही ना साबित ना हो। अब देखिए इतनी बारीकी रखी गई, ध्यान रखा गया कि अच्छा हदीस तो सुनी फ़लाँ उस्ताद से फ़लाँ शागिर्द ने लेकिन वो पर्टिकुलर वो वाली हदीस नहीं सुनी, फिर भी उन्होंने बयान कर दी उनका नाम लेकर, तो ये गलत हो जाएगा। आपने जिस मुहद्दिस से जिस रावी से जो हदीस सुनी हो उसी हदीस को आप बयान कर सकते हो उनका नाम लेकर, आप वरना कोई दूसरी हदीस उनका नाम लेकर बयान नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया, आप सोचें कितनी बारीक भी नहीं थी। जैसे आपको मालूम है कि इमाम बुखारी इमाम दाखली के स्टूडेंट थे लेकिन हर हदीस उनसे नहीं सुनी इमाम बुखारी ने, बल्कि डिफरेंट स्कॉलर से उन्होंने हदीस सुनी थी। तो यहाँ पर मतन में इल्लत की मिसाल दी जा रही है, अत्तियर तो शिरक व मामिन्ना इल्ला वलेकिन अल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कल, इब्ने माजा। यहाँ पर अंडरलाइन किए गए अल्फाज हैं, देखें व मामिन्ना इल्ला, तो हदीस में यहाँ पर बता दें कि शगून लेना शिरक है मगर अल्लाह ताला तवक्कुल के ज़रिए से उसे दूर कर देता है। अब यहाँ पर जो वमा मिन्ना इल्ला और हम में से हर एक, ये अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है जो कि रावी ने गलती से हदीस के मतन में बयान कर दिया है। अब इसे कौन पहचान सकता है जो हदीस जो हर जगह से हदीस लेता हो और उसको दूसरी जगह से ये हदीस मिली हो और दूसरी जगह और ज़्यादा जो सिक्का रावी है उन्होंने इस हदीस में वमा मिन्ना इल्ला के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए हैं। मतलब ये कि हम में से हर एक के दिल में शगून के बुरे ख्यालत आते हैं लेकिन अल्लाह पर खालिस भरोसा और तवक्कल करने वालों के दिल से अल्लाह ताला उन ख्यालत को दूर कर देता है। तो ये हदीस बज़ाहिर सनद व मतन के लिहाज से सही है लेकिन इस हदीस में वमा मिन्ना इल्ला के अल्फाज इल्लत हैं। इमाम बुखारी कहते हैं सुलेमान बिन हरब के नज़दीकी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के अल्फाज हैं। इस हदीस को इब्ने मसूद से कई और लोगों ने इस इजाफे के बग़ैर रिवायत किया है। तो कहाँ से फिर पता चल गया, अब्दुल्ला बिन मसूद से जो बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी इस हदीस को सुना था उन लोगों ने ये अल्फाज नहीं बयान किए, सिर्फ यहाँ पर ये जो रावी हैं उन्होंने ये अल्फाज बयान किए हैं। तो इसका मतलब है कि ये अब्दुल्ला बिन मसूद के अल्फाज हैं जो उन्होंने समझाने के लिए कहे थे लेकिन रावी को गलत फहमी हो गई और उसने उसको हदीस के अल्फाज में लिख दिया। तो अब देखिए जो माहिर मुहद्दिसीन हैं वो इस बात को पहचान लेते हैं। तो ये मतन में इल्लत की मिसाल हुई थी, अब सनद में इल्लत की मिसाल देखते हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन दीनार के बजाय अम्र बिन दीनार के नाम के इस्तेमाल का सबब रावी का वहम यानी गलत फहमी हो सकती है, यानी जो इल्यूजन होता है कि बाज़ वक़्त हम समझ नहीं पाते, हमारे जहन में ये बात है जारी कि अच्छा अब्दुल्ला बिन दीनार सुना था कि अम्र बिन दीनार सुना था इस तरह से। तो इसकी तफसील भी आगे अहादीस ज़ईफ़ा में आएगी। अब सही हदीस की मिसाल देख लीजिए, حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان کو امام مالک نے، اور ان کو ابن شہاب زہری نے، ان کو محمد بن جبیر نے، اور ان کو ان کے والد مشہور صحابی جبیر بن مطعم نے بیان کیا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے سنا۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث میں اس کی سند متصل ہے یعنی کوئی بیچ میں ڈسکنٹینیویشن نہیں ہے، اس حدیث کا کوئی راوی بھی غیر عادل نہیں ہے یعنی سارے کے سارے عادل ہیں، اس حدیث کا کوئی راوی غیر ضابط نہیں ہے یعنی سب کا حافظہ تیز تھا، اور راویوں کے جو حالات ہیں وہ بھی پوری طرح ظاہر ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن یوسف 218 ہجری ثقہ ہیں متقن ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، امام مالک بن انس 179 ہجری امام فقہ ہیں اور حافظ حدیث ہیں، حضرت ابن شہاب زہری 124 ہجری فقیہ ہیں تابعی ہیں اور حافظ حدیث ہیں، محمد بن جبیر 100 ہجری ثقہ تابعی ہیں اور صحابی زادین صحابی کے بیٹے ہیں، اور جبیر بن مطعم 59 ہجری صحابی رسول ہیں۔ تو یہ حدیث شاذ نہیں ہے اس لیے کہ کسی قوی تر حدیث سے اس میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں پایا جا رہا، متعارض نہیں ہے، پھر اس میں کوئی علت نہیں پائی جاتی یعنی کوئی چھپا ہوا نقص بھی اس میں پایا نہیں جاتا، چونکہ یہ پانچ شرطوں پر پوری اترتی ہے اس لیے یہ صحیح حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث صحیح کا جو حکم ہے کہ محدثین فقہ اور اصولین کے جمع کی روشنی میں صحیح حدیث پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے، صحیح حدیث ایک حجت شرعی ہے، यानी जो कानून हमारा बनता है, शरीयत बनती है, तो वो सही हदीस, कुरान और सही हदीस से मिलकर बनती है। तो सही हदीस की आप पांच शरायत जान गए, कौन सी पांच शरायत हैं और किस तरह से हदीस को सही किया जाता है, और यानी किस तरह से जांच परख कर हदीस को सही कैटेगरी में डाला जाता है, और किस तरह से जांच परख कर उसको ज़ईफ़ की कैटेगरी में डाला जाता है। अब आप बताइए कि इतनी जो अरकरेज़ी थी, इतनी जो मेहनत और इतनी काविशें थीं, इतनी बारीकियाँ थीं, और इतना सब कुछ मुहद्दिसीन ने इतना मेहनत किया, और आकर कोई शख्स कहते कि मैं तो हदीस को ही नहीं मानता हूँ क्योंकि हदीस में तो बहुत मिलावट हो चुकी थी, हम तो सिर्फ कुरान को मानेंगे, तो फिर ऐसे शख्स को क्या कहेंगे आप? इसके बारे में डिटेल थी। अब हम देखते हैं हसन हदीस। हसन हदीस भी असल में सही का ही एक नाम है। हसन हदीस जो कि मकबूल है, एक्सेप्टेबल है, ये हदीस की दूसरी कस्म है। असल में इल्म हदीस की इस्तेलाह में हसन वो हदीस है जिसकी सनद मुत्तसिल हो, आदल रावियों से मरवी हो, शजूज से पाक हो और इल्लत से पाक हो, लेकिन ऐसे रावी भी रखती हो जिनका हाफिज़ा कुछ कमज़ोर हो। दूसरे लफ्ज़ों में सही हदीस पाँच शरायत पर पूरी उतरती है, जबकि हसन हदीस सिर्फ चार शरायत पर। हदीस सही के तमाम रावियों का कुव्वत ज़ब्त में यानी हाफिज़े में पुख्ता होना ज़रूरी है, लेकिन हसन हदीस में कोई रावी खफीफ ज़ब्त होता है यानी हाफिज़े में थोड़ा कमज़ोर भी हो सकता है, और हसन हदीस कबूल की जाती है। इब्तदाई ज़माने में हसन हदीस की इस्तेलाह ना थी, उसे ज़ईफ़ में शुमार किया जाता था, लेकिन उसकी छान फटक करके उसको सही में डाला गया। हदीस हसन की मिसाल लौल अन अशुक अल उमदी लअमरतुहुम बिस्सिवा की इंदा कुल्ली सलात, सुनन तिर्मिज़ी। इस हदीस की रिवायत मोहम्मद बिन अम्र बिन अलकमा 145 हिजरी ने की है, और उन्होंने हज़रत अबू सलमा ताबई 94 हिजरी से, और उन्होंने मशहूर सहाबी अबू हुरैरा 58 हिजरी से, और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी से। इस हदीस में मोहम्मद बिन अम्र हिफ्ज़ ज़ब्त में मुत्तहम है, यानी उनके ऊपर थोड़ा सा ये इल्ज़ाम है कि ये इनका हाफिज़ा इतना तेज़ नहीं था, कभी कभी भूल जाते थे। ठीक है, बाकी चार शरायत पर यह हदीस पूरी उतरती है, इसलिए इस हदीस का शुमार हसन होगा। मालूम होना चाहिए कि यहाँ तिर्मिज़ी में इस सनद के साथ यह हदीस हसन है, लेकिन मिलते जुलते अल्फाज के साथ यह हदीस सही मुस्लिम में भी आई है। ठीक है, तो हसन हदीस भी सही होती है, लिहाजा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हदीस ज़ईफ़, हर वो रिवायत जो अपने अंदर हसन हदीस की चार ज़रूरी शरायत नहीं रखती वो ज़ईफ़ या मरदूद कहलाती है। हसन और हदीस ज़ईफ़ का फ़र्क, इब्तदाई ज़माने में हसन की इस्तेलाह मौजूद नहीं थी, हसन को ज़ईफ़ी में शुमार किया जाता था, लेकिन बाद के अदवार में सही और ज़ईफ़ अहादीस के दरमियान एक नई इस्तेलाह हसन की वज़ा की गई। ज़ईफ़ अहादीस में इनका दर्जा सबसे बुलंद था, इसलिए कि दीगर तमाम शरायत पर यह हदीस सही हदीस के मेयार पर पूरी उतरती थी। बस अगर कुछ खामी थी तो यह कि उसके किसी रावी में क़ुव्वत ज़ब्त की कमी पाई जाती थी, यानी हाफिज़े की कमी। अब हम देखते हैं कि सही लिज़ाते ही और सही लिग़ैरे ही, यानी अपने ज़ात के अतबार से, यानी जो सही हदीस है वो अपनी ज़ात के अतबार से सही और पांच शरायत पर पूरी उतरती है और अपनी ज़ात में सही होती है। अब सही लिग़ैरे के बारे में जान लीजिए, ये अपनी ज़ात में हसन होती है, लेकिन उसकी दूसरी सनदें चूँकि कवी होती हैं इसलिए सही के दर्जे पर पहुंच जाती हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक हदीस आपको, जैसे अभी आपने जिस हदीस के बारे में पूछा ना कि यहाँ पर तो यह हदीस जो है हसन है, लेकिन इससे मिलते जुलते अल्फाज के साथ यह हदीस सही मुस्लिम में सही मौजूद है, तो अब जो हदीस का मतन यानी जो उसका टेक्स्ट है वो आपको सही यानी आपको हसन हदीस में मिला, लेकिन उसके बराबर ही दूसरी तरफ दूसरे रावियों के साथ वो हदीस सही में आ गई, तो फिर वो क्या हो जाएगी? वो भी सही हो जाएगी। तो उलमाए हदीस हसन लिजाते ही हदीस के रावियों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं अल्फाज या टर्म सदूक, सदूक लबास भी लई सभी बास, और सही लिए गैर ही वह हदीस है जो सही लिजाते ही से कमतर होती है और हसन लिजाते ही से बरतर होती है। यानी जैसे कि पीछे की मिसवाक वाली हदीस है, अब ये क्या हो गया? हसन हदीस है, लेकिन ये सही में कब चली जाएगी? जब दूसरी तरफ भी हमको इसकी जैसी बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी, इससे मिलती जुलती हदीसें, तो अब क्या हो गया कि हसन से ऊपर हो गई वो दर्जे में हदीस और सही में आ गई, वो सही लिए गैर ही हो गई, वो हसन लिजाते ही और हसन लिए गैर ही। अब इसमें भी वही सेम सही वाला दर्जा पाया जाएगा, यानी एक एक हदीस है जो सही है, अपने पूरे सारे जो उसके शरायत हैं उस पर पूरी उतर गई वो हदीस, तो वो तो सही हो गई। ठीक है, अपनी ज़ात के अतबार से हदीस है, पांच शरायत पूरी उतर गई, लेकिन अब सही लिए गैर ही क्या थी कि उसमें हसन हदीस थी, लेकिन जब दूसरी अहादीस से मिल को उसका टेक्स्ट हमको मालूम पड़ गया कि दूसरी जगह भी रसूल अकरम ने ये बात फरमाई थी तो सहाबा ने इसको सही बयान किया, तो फिर वो क्या हो गई? हसन से ऊपर चली गई। तो सही लिए गैरे ही में आ जाएगी वो। यानी एक उसमें शर्त कम थी, हाफिज़े की कम थी शर्त उसमें, लेकिन दूसरी सनदों से जब वो हदीस मिली हमको तो उसका मत, यानी हम उसको टेक्स्ट को सही के तौर पर ले लेंगे। इसी तरह सेम हसन में भी होता है कि हसन ली जाते ही और हसन ली गैरे ही। हसन हदीस चार शरायत पर पूरी उतरती है ना, यानी आपको मालूम है कि चार शरायत जिसमें हो तो वह हसन हदीस होगी, और अपनी ज़ात में वो हसन होती है, बस किसी रावी के हाफिज़े में कुछ कमी होती है। अब ये जो हसन ली गैरी ही है उसके बारे में हम देखते हैं कि ये अपनी ज़ात में ज़ईफ़ होती है, लेकिन उसकी दूसरी सनदें चूँकि कवी तर होती हैं इसलिए यह हसन के दर्जे पर पहुँच जाती है। यानी अगर एक हदीस कहीं हमको ज़ईफ़ मिली लेकिन उससे मिलती जुलती दूसरे रावियों से हदीसें हमको सही मिल रही हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वह हदीस क्या कहलाएगी, हसन ली गैरी ही के दर्जे पर पहुँच जाएगी। जैसे कि बहुत सारे हमको दुआओं की मिलते हैं अहादीस या फिर और भी बातों की मिलते हैं, तो अब एक जगह तो वह ज़ईफ़ है लेकिन दूसरी जगह उसकी यानी जो रावी बयान करने वाले हैं वो उन्होंने उसको हदीस को बयान किया है और सिर्फ उनके हाफिज़े में कमी थी, तो अब क्या हो गया कि वो ज़ईफ़ से ऊपर हो गई और हसन ली ज़ाते ही से नीचे हुई, तो उसको हसन ली गैरी ही कहा गया। यानी एक बीच की टर्म इस्तेमाल कर ली गई इसके लिए, क्योंकि दूसरी जगह वह हदीस सपोर्ट के तौर पर हमको जगह सही मिल रही है, तो इस वजह से उसको हसन ली गैरी ही कह दिया गया। तो ज़ईफ़ हदीस को हसन ली गैरी ही का दर्जा पाने के लिए दो शर्तें चाहिए। पहला है कि ज़ईफ़ की कई दूसरी सनदें हों जिसके रावी पहले सनद से कवीतर हों, और दूसरा ज़ईफ़ होने की वजह रावी के हिफ्ज़ में ख़राबी या रावी की लाइल्मी हो। तो हसन ली गैरी ही वह हदीस है जो हसन ली ज़ाती से कमतर होती है और ज़ईफ़ से बढ़तर होती है। इंशाल्लाह इसको और अगली क्लास में हम समझेंगे। हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته